आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। गोरखपुर में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा संविधान किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के नागरिकों का होता है स्वाभिमान। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणोद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितरी उद्यान का भी किया लोकार्पण, कहा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही बनाए रख सकते हैं संतुलन। देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है महाकुंभ, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2,00,000 करोड़ रुपए मिलने का है अनुमान। और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति की आज लखनऊ में होगी बैठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दोपहर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भाजपा अनुसूचित मोर्चा द्वारा आयोजित संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के नागरिकों का स्वाभिमान होता है। संविधान उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। बाबा साहब के बनाए संविधान ने संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारत को दुनिया के सर्वोच्च लोकतंत्र के रूप में पहचान दी।
भारत से पहले इंग्लैंड में और अमेरिका में लोकतंत्र आ गया था, लेकिन वहां वंचितों को अधिकार, वहां पर दलितों को अधिकार, वहां पर महिलाओं को अधिकार भारत से बाद में मिला, क्योंकि वहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महामानव नहीं था। उन्होंने भारत से सीखा है, भारत ने पहले दिन से, और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है 2029 के बाद 1/3 सीटों पर सांसद और विधायक बनकर के महिलाएं जाएंगी।
उधर गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही हम लोग संतुलन बनाए रख सकते हैं।
प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, वन्य जीवों के साथ, अन्य जीव जंतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, संवेदनशील है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल है तो पर्यावरण हमें जीने के लिए उत्तम वातावरण देगा। और इस पर सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए, डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार इसको आगे बढ़ा रही है।
इसके पहले मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी हर 15 दिन पर विकास परियोजनाओं की समीक्षा करें, साथ ही परियोजनाओं की प्रगति को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाए। आस्था, अध्यात्म और संस्कृत के अद्भुत समागम प्रयागराज महाकुंभ में देश और दुनिया से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 50,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं और कल्पवासियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी महाकुंभ नगर का भ्रमण किया, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुईं।
राज्यपाल ने सेक्टर 9 में विद्या भारती के पूरी यूपी क्षेत्र कैंप द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने महाकुंभ को भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिकता का जीवंत संगम बताते हुए कहा कि केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों और संस्कृत का प्रतिबिंब है। इसके बाद राज्यपाल ने रज्जू भैया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला कल प्रयागराज महाकुंभ में वैश्विक आतंकवाद और उसके समाधान विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री शुक्ला ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र को आत्मसात कर भारत ने हमेशा शांति का संदेश दिया है, सबके सुख सबके निरोग की कल्पना की है। आज का भारत तेजी से इस दिशा में बढ़ रहा है। उधर केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल प्रयागराज स्थित पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री रामलला के दर्शन किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में विविधता में एकता के दर्शन होते हैं।
प्रयागराज एक आस्था का ऐसा विषय बना है कि सारे देश और दुनिया के लोग आते हैं और एक आपस में समाज का जो एकता, एक समरसता, इसका जो प्रतीक बना है, विविधता में एकता के दर्शन होते हैं, वो भी अकल्पनीय है और उससे भी देश को बहुत बड़ा बल मिला है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
रेलवे द्वारा महाकुंभ के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज करीब 3 दर्जन विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन सभी ट्रेनों का विवरण रेल मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजूद है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 10 महाकुंभ मेला विशेष रेलगाड़ियां आज पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजर रही हैं। महाकुंभ 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। इसके जरिए प्रदेश के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था की भी तस्वीर बदलेगी। एक रिपोर्ट।
सरकार ने इस महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया है, जिसमें करीब 15 लाख विदेशी पर्यटकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं इसकी तुलना में 2019 में आयोजित कुंभ मेले में 25 करोड़ लोग शामिल हुए थे। प्रयागराज में इस महीने की 13 तारीख से शुरू हुआ महाकुंभ अगले महीने की 26 तारीख तक चलेगा। एकता और समानता के इस बृहद कार्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक साथ आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए के योगदान की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की GDP में भी 1% से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति JPC की एक अहम बैठक आज लखनऊ में होगी। इस बैठक में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। इसके बाद समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और अन्य सदस्य मुतवल्ली एसोसिएशन और वक्फ से जुड़े कुछ और लोगों के साथ भी चर्चा करेंगे। प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा। इस मौके पर लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस संबंध में लखनऊ के मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने अधिकारियों को आयोजन स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिवहन विभाग से कार्यक्रम स्थल पर आने जाने के लिए 8 रूट से अतिरिक्त बसों का संचालन करने के लिए कहा गया है। प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को होने वाले उपचुनाव में भाजपा सपा समेत कुल 10 उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला होगा। कल नाम वापसी के आखिरी दिन उपचुनाव के लिए किसी भी प्रत्याशी द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया। प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कोहरा और पछुआ हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अचानक ठंड बढ़ने की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में हुए बदलाव का क्रम आज और कल भी जारी रहेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गोरखपुर में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा संविधान किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के नागरिकों का होता है स्वाभिमान। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का भी किया लोकार्पण, कहा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही बनाए रख सकते हैं संतुलन। देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है महाकुंभ, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रुपए मिलने का है अनुमान। और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति की आज लखनऊ में होगी बैठक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।